वो करते हो। समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए, कितने खजाने दिए, अथा अकूट, अखंड, अनगिनत, अगण्य, कौन कौन से खजाने हैं? नौ मुख्य खजाने निरंतर हमारी बुद्धि में रहे। सबसे पहला खजाना ज्ञान, फिर गुण, फिर शक्तियां, फिर समय या श्वास, फिर संकल्प, फिर पवित्रता, फिर खुशी, फिर दुआएं और पुण्य कर्म। यह है नौ निधियां या नौ खजाने। संतुष्टता भी खजाना है, वैसे तो बोल भी खजाना है, खजाने अनगिनत है, परंतु नौ खजाने मुख्य है। तो समर्थ आत्माएं अर्थात जिनके पास बहुत सारे खजाने हो। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। बाबा ने कहा रूहानी नशे की पॉइंट्स का मनन, खुशी की पॉइंट्स का मनन। संगम का समय, यह भी बड़े से बड़ा खजाना है। जितने खजाने उनमें से किसी भी खजाने को व्यर्थ न करना, खजानों को संभाल के रखना, और तीसरा एक काम है, वो कौन सा? बढ़ाना। एक तो पहला काम उसको स्टोरेज, सेफ्टी, और तीसरा उसको बढ़ाना, इंक्रीमेंट, वो बढ़ता रहे। ये तीन काम होते रहे। फिर बढ़ाने की बहुत सारी विधियां है। फिर सर्वशक्तियां, यह भी खजाना है, शक्तियां अनगिनत है, ईश्वरीय शक्तियां। फिर सर्वगुण, यह भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना, यह है समर्थ आत्मा की निशानी। सदा हर खजाने सफल होते हैं या व्यर्थ भी हो जाते हैं? कभी व्यर्थ भी होता है। जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है, जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना। क्योंकि जानते हो कि हर खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है? अगर एक भी संकल्प पर सेकंड व्यर्थ जाता है तो, अगर एक संकल्प व्यर्थ जाता है या एक सेकंड व्यर्थ जाता है तो अंधकार आ गया, तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। संकल्प और सेकंड, हमारा एक एक संकल्प महान हो और एक एक सेकंड हमारा मूल्यवान है, तो इतना याद रहता है, इतनी ये जागरूकता है अपने अंदर, इतना ये होश है कि बेहोश हो जाते हो। तो एक सेकंड कितना बड़ा हुआ? एक सेकंड छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया हुआ है ना, क्या गाया हुआ है? सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, और एक सेकंड एक साल के बराबर। कदम में पद्मों की कमाई है। एक कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गवाना अर्थात पदम गवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति। सफल करते जाओ तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। सफलता किसके लिए जन्म सिद्ध अधिकार है? थोड़ा कुछ और बोला है, संगम योगी ब्राह्मण नहीं बोला है, कुछ और आत्मा है। परफेक्ट, सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको याद रखना होगा, बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो कैसे करो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ज्ञान स्वरूप होकर के, त्रिकालदर्शी होकर, कर्म से पहले त्रिकालदर्शी और कर्म करते हुए साक्षी, तो दृष्टांत बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे, सैंपल बनेंगे, आदर्श बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे। तो ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करना तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो सफलता का आधार है व्यर्थ ना गवाकर सफल करना। ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन सफल भी किया है, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो समर्थ आत्मा की निशानी क्या है कि उनके पास खजाने होंगे, सुरक्षित होंगे खजाने। वो ऐसे खजाने हैं जिनको चोर चोरी नहीं कर सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई डाकू नहीं आ सके, कुछ तो पहरेदार लगाने पड़ेंगे वहां पर। दो पहरेदारों की बात बाबा ने 2-3 दिन पहले की थी, अटेंशन और चेकिंग। आज के वरदान में भी है, अटेंशन का जो पहरेदार है, खबरदार रहे, वो अलर्ट रहे। तो एक तो पहरेदार लगाने पड़ेंगे ताकि चोरी ना हो, चाहे कोई डाकू उसे लूट ना ले जाए। एक दूसरा, उसको गवाना नहीं है, व्यर्थ ना हो जाए वो। तो 9 खजाने में से कोई भी खजाना व्यर्थ ना जाए। उसमें समय सबसे महत्वपूर्ण, हमारा समय व्यर्थ ना जाए, हमारे संकल्प व्यर्थ ना जाए। ये तो सबसे मुख्य है उनमें जो व्यर्थ जाते हैं। फिर आगे बाबा बात कर रहे खजानों को बढ़ाने की, कैसे बढ़ाएंगे। जो शक्तिशाली शासक होता है वो अपने खजानों को या अपने राज्य को केवल उतना ही नहीं रखता है, बढ़ाता है। वो उतना ही अगर रखे, उसके पिता ने उसको जितना दिया तो उसको शक्तिशाली राजा नहीं कहा जाता है। जैसे दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था मगध में, उसका जो बेटा था बिंदुसार, उसने उसको और बढ़ाया, और उसका जो बेटा था उसने तो सबसे ज्यादा बढ़ाया, सम्राट अशोक। कहां से कहां तक लेके चला गया वो शासक, शासन उसका। तो जो शक्तिशाली शासक होता है, जो समर्थ आत्माएं होती है, वो जो है उसको तो रखेगी और बढ़ाएगी। ये समर्थ आत्माओं की निशानी है। जो बीच का था उसने इतना नहीं बढ़ाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसने इतना नहीं बढ़ाया, पर उसका जो बेटा था उसने और ज्यादा बढ़ाया। इसके लिए जो बिंदुसार है उसको क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ऐसा शब्द है उसके लिए। पिता का पुत्र मतलब उसका पिता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, वो अधिक शक्तिशाली था, और उसका बेटा है अशोक, इसके लिए उसको पुत्र का पिता या पिता का पुत्र ऐसी संज्ञा दी गई है। तो जो शक्तिशाली शासक होता है वो, उसकी निशानी है कि वो अपने शासन को बढ़ाता है। हाँ, बढ़ाना। तो बाबा पूछ रहे कि खजानों को बढ़ाना आता है, कैसे बढ़ाएंगे खजानों को, पूर्णिमा में कैसे बढ़ाएंगे इन खजानों को,
दान
करना तो बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, बांटोगे तो बढ़ेगा। ये परमात्मा अर्थशास्त्र है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। जो संसार का इकोनॉमिक्स है वो उल्टा है, उसमें जितना बांटोगे वो कम होगा। ये है परमात्मा अर्थशास्त्र, ये परमात्मा का अर्थशास्त्र है। इसमें प्रिंसिपल सिद्धांत उल्टे है, यहाँ बांटो दान दो तो बढ़ता है, वहां दान दोगे पैसे तो कम होंगे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ और है। तो बाबा कहते हैं खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। सफल करना ये शब्द हिंदी भाषा में और कहीं उपयोग में नहीं आया है, बाबा ये इसका उपयोग करते हैं। सफल करना मतलब टू यूटिलाइज इन वर्थवाइल वे, उसको यथार्थ रीति से प्रयोग में लाना, ये सफल करने का अर्थ है। तो उसको बाबा कहते हैं कार्य में लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो कब कब लगाना है कार्य में इस खजानों को, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है इन खजानों को। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो विश्व सेवाधारी हो। हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखुट खजाने मिले हैं वे देने ही हैं। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है, मनसा से वाचा से कर्मना से। जो महादानी होते हैं वो क्या दे बिना रह नहीं सकते, वो एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो क्या करो? कोई आया ही नहीं ज्ञान सुना सुनने, हम तो सुनाना चाहते थे पर कोई आता ही नहीं, तो क्या कहें? तुम मनसा करो। अच्छा, मनसा का भी नहीं मिलता तो अपने कर्म वो प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। जरूरी नहीं है सबको ज्ञान सुना नहीं है, जरूरी नहीं है मनसा का भी अगर चांस नहीं मिल रहा है। बाबा तो ये कह रहे हैं कि कर्म जीवन ही ऐसा हो जाए। दृष्टांत कहते हैं ना बाबा, सैंपल, जीवन ही दृष्टांत हो जाए कि उसको देखकर किसी ने सेंटर पर कोर्स किसी ने कराया पर जो जीवन में परिवर्तन आया किसी स्टूडेंट के, वो किसी दूसरी बहन को देखकर जिसने कभी बात भी नहीं की, जिसको खाली देखा उसकी दिव्यता को देखकर, उसकी चलन को देखकर, उसके आचरण को देखकर, उसकी वाणी को केवल सुना, उससे भी बात नहीं किया, किसी और से बात कर रही, तो वो है कर्म द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा, सर्वोच्च सेवा है। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, कोई सुनने वाला नहीं मिला और बेचैन हो जाना, ये भी कोई बहुत महान स्थिति नहीं है कि कोई आ ही नहीं रहा है और परेशान हो रहे हैं, किसको सुना है ज्ञान, और खुश भी हो रहे हैं अपनी स्थिति को देखकर कि कितनी अच्छी स्थिति है कि ज्ञान सुनाने के लिए बेचैन है,
सुनने वाला बेचैन हो
जाएगा। लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है, जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। रूहानी फूल अर्थात संडे क्या बोला, जो रूहानी आकर याद में रहे और सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करे, यह है रूहानी रूहे गुलाब की निशानी। सदा खिले हुए, सदा रंगत भरे, सदा सुंदर, सदा खिले हुए, कली नहीं, मुखड़ी नहीं, सड़े हुए नहीं, खिले हुए। ऐसे खिले हुए फूल स्वयं को समझते हो और बाप पर अर्पित कर सकते हो। स्वयं वो मुखरी है, मुखरी। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना, फर्स्ट क्लास सैंपल क्या हो जाएगा उनका, फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प पर रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड क्या कर देगा उसको, संशय का है तो वो वैसे ही परिणाम देगा। तो यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देगा, होने वाली थी पर संकल्प वैसे दिया ना कि नहीं होगी, तो उसने वो भी सुन लिया और उसको साकार कर देगा वो। इसलिए जब समय परिवर्तन का है, समय कौन सा है, परिवर्तन का, तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही, हिम्मत वाले होना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर है, सोच रहे हैं। समर्थ आत्मा हूं यह बार बार याद रखना है तो कमाल करके दिखाएंगे। क्या याद रखना है, मैं समर्थ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, बलवान आत्मा हूँ, शक्तियों से संपन्न आत्मा हो, विजयी आत्मा हो, विजयी रत्न हो, महावीर हो, बलवान हो। कल कहा था ना तुम महावीर महावीरनिया हो, सच्चे सच्चे महावीर और सच्ची सच्ची महावीरनिया तुम हो, तुम बहादुर हो, शिव शक्तियां हो, महारथी हो, दोनों है। अच्छा, अभी जितने आए हो उससे 10 गुना बढ़कर लाना। बाबा ऊंचा लक्ष्य देते हैं बहुत, जितना ऊंचा लक्ष्य देंगे तो थोड़ा नजदीक तो पहुंचेंगे। बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है हमेशा, मुश्किल है। तो क्यों नहीं कहते हो कि बाबा कह रहे 10 गुना लाओ, तो बाबा कहते हो मुश्किल तो नहीं है, तो क्या कहना चाहिए फिर तुमको? तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बड़ा करके ले आएंगे, 100 गुना लाएंगे तो ऊपर से फूलों की वर्षा हो जाएगी। बाबा कहते तुम्हारे योग का चार्ट 8 घंटे हो, तो हमें क्या कहना चाहिए? तो ऊपर से स्वर्ग के देवता आ जाएंगे, फूलों की वर्षा होगी ऊपर से। मनसा वाचा कर्मना कोई गलती नहीं, हाथ उठाओ। कौन सा चार्ट देने को कहा था बाबा ने? रात को सोते समय मनसा वाचा कर्मना कोई गलती नहीं तो हाथ उठाओ। ऐसा अगर हाथ उठा दिया तो ऊपर से पुष्प की वर्षा होगी। मुश्किल है तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बड़ा करके ले आएंगे? कितनी दुआएं मिलेगी? अभी दुआएं भी खजाना है, ये खजाने सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ज्ञान देंगे तो दुआएं मिलेगी, गुणों का स्वरूप बनेंगे तो दूसरा कोई देखेगा दुआएं मिलेगी। ज्ञान गुण शक्तियां, समय को सफल करना या फिर खुशी, ये सेवा करना, सेवा से खुशी मिलेगी, खुशी भी खजाना है। पुण्य कर्म भी खजाना है, क्योंकि सेवा में जो भी सेवा की जाती है वो पुण्य कर्म में आ जाता है। तो खुशी मिलेगी, पुण्य कर्म और दुआएं भी मिलेगी आत्माओं की। दुआएं इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खजाना है। सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली है। जिसके पास जितनी ज्यादा दुआएं उसका उतना पुरुषार्थ सहज, और जिसके पास जितनी ज्यादा बद्दुआ है उतना पुरुषार्थ करने के बाद में भी सफलता कम। असंख्य आत्माओं की दुआएं जिसके पास है उसका नहीं, जिसके पास दुआ है
गाड़ी निकल जाएगी,
उनकी गाड़ी तेज चलेगी, दुआएं उनको दौड़ाएगी। उड़ने वाले हो ना, उड़ने वाले हैं, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, तो क्या सुना? सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा। समर्थ आत्माओं की निशानी कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो हमारे संकल्प व्यर्थ ना जाए, बोल व्यर्थ ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, ये 3 मुख्य है। व्यर्थ जो जाते हैं, एक तो संकल्प व्यर्थ चले जाते, बोल व्यर्थ चले जाते और समय व्यर्थ चला जाता है। जहां जहां समय व्यर्थ जाता है उसको रोकना है। अपनी ही एक लिस्ट बनाओ कि मेरा समय कहां वेस्ट होता है। बोल भी वेस्ट नहीं करने। अगर कोई वैसे ही चुप रहता है तो उसमें स्वतः ही शक्ति उत्पन्न हो जाती है। शाम तक अगर कोई मौन रहे, मौन अर्थात केवल न बोलना नहीं, मौन अर्थात स्व से बातें करना, मौन अर्थात परमात्मा की याद में रहना, मौन अर्थात केवल चुप रहना नहीं है, श्रेष्ठ संकल्पों में रहना मौन है। मुख से बोलना न बोलना ये तो परिणाम है जो मन में हो रहा है उसका, जो घटनाएं घट रही है मुख्य वो मन में घट रही है। केवल मुख को बंद कर देना वो एक दमन है, पर उसके भी अच्छे परिणाम है, वो किया भी तो भी अच्छा ही है। परंतु मुख्य है वो स्वतः आ जाए, वो रिजल्ट है। जब मन श्रेष्ठ संकल्पों में रहता है, महान संकल्पों में रहता है, ज्ञान के चिंतन में रहता है, कर्म करते हुए भी वो जो मौन घटित होता है वो श्रेष्ठ मौन होता है। तो दूसरा बोल और फिर संकल्प। हमारे संकल्प
तो मन का मौन है,
वो मन का मौन ही है,
मन निसंकल्प।
निसंकल्प मन की अवस्था जो है, विचार एक है, विचार विचारहीनता एक है, विचार से परे दो चीजें हैं। सन्यासी लोग जो है मन को शून्य करने का प्रयत्न करते हैं, वो अलग है कि मन में कोई भी विचार ना हो। मन का मौन अर्थात मन में इतने श्रेष्ठ संकल्प हो कि वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प की जो गति होती है वो स्लो होती है, एक ही संकल्प लंबा समय चलता है। मन का मौन अर्थात मन में कोई संकल्प नहीं, ये गलत है। व्यर्थ संकल्प उसमें नहीं, निगेटिव संकल्प उसमें नहीं, सामान्य साधारण संकल्प उसमें नहीं, विकारी संकल्प उसमें नहीं है। चारों संकल्पों से उठ के मौन अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, स्वमान के संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प, ये सारे जो संकल्प अगर मन में है तो ये मौन है। मौन अर्थात केवल बात न करना नहीं है, ये तो संसार की परिभाषा है मौन की, केवल बात न करना। मन में उच्च संकल्प रखना, ये मौन है। स्व से बात करते रहना, स्व के चिंतन में रहना, ये मौन है। ये परमात्मा से बातें करते रहना, ये मौन है। ज्ञान के चिंतन में रहना, ये मौन है। तो ये सब ऊंची अवस्था है हमारी। तो बाबा संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए, सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प। सभी श्रेष्ठ है, एक 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 से बढ़कर है, ये बाबा के वाक्य है, एक एक से बढ़कर है। समय, शक्तियां, गुण, तो सबको सफल करना है, और सफल करने की जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी रोशनी का आना और अंधकार का जाना, हम हैं अंधकार में। अगर हम ये सोचे कि पहले रोशनी आ जाए फिर अंधकार चले जाए, ये नहीं हो सकता। अंधकार है कमरे में, उसी कमरे में अंधकार में ही दिए को जलाना है। उसमें कभी दिया दिखेगा नहीं सबसे पहले, तो फिर उसकी बाती नहीं दिखेगी कभी, कभी तेल गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, पर यह होने के बावजूद भी उस अंधकार में कमरे में ही तेल को दिए को जलाना है, कठिन काम है, पर दूसरा मार्ग ही नहीं है। अगर हम ये सोचे कि पहले अंधकार को भगाओ फिर दिया जलाता हूं, ये भी नहीं हो सकता। उसी में दिए को जलाना, इसके लिए पुरुषार्थ, बड़ा पुरुषार्थ है थोड़ा, क्योंकि एक बार प्रकाश आ गया तो अंधकार का अस्तित्व ही नहीं। एक बार श्रेष्ठ संकल्प आ गए तो वहां एक है प्रयत्न करना कि मुझे व्यर्थ संकल्प से मुक्त होना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त होना है। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? बाबा को मेहनत पसंद ही नहीं है, बाबा ने कहा है श्रेष्ठ संकल्प लाओ तो जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार है ही नहीं, क्योंकि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां पर श्रेष्ठ संकल्प है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि रोशनी का आना और अंधकार का जाना, तो संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो एक सेकेंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है। अपने आप को बैठकर समझाना है, अपने ही मन को समझाना है कि ये क्या क्या है। अब तक ज्ञान दूसरों को समझाया, अब स्वयं स्वयं को समझाना है कि हे मन सुन, हे मूर्ख मन कहाँ जा रहा है, हे मूर्ख मन किस ओर आकर्षित हो रहा है, देह की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्या है इस देह में। अपने ही मन में वैराग दिलाना है। जैसे बुद्ध के पास कोई भी एक नया व्यक्ति आता था कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे दीक्षा लेनी है, हाँ बस वो सबकॉन्शियस को सुनाना है, अवचेतन मन इस आवाज को सुन ले, एक बार वो सुन लिया तो बस हो गया काम पूरा। बुद्ध के पास कोई भी व्यक्ति आता था और कहता था मुझे सन्यास लेना है, दीक्षा लेनी है, दीक्षित होना है, तो कहता है ठीक है एक काम करो, 3 मास के लिए मरघट पर जाओ, स्मशान पर, बस वहीं रहना है 3 मास तक। बस सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज देखना है, चिता है, जल रही है, शरीर जल रहा है, भस्म हो रहा है, बस उसको देखते रहना, और कुछ करना नहीं, कोई और पुरुषार्थ नहीं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये 3 मास तक देखता रहे, उसमें वैराग न आए? सारा वैराग तो एक ही चीज से है, देह से। देह ही तो सारे आकर्षण का कारण है। कल भी बाबा ने कहा देह से डिटैच होने की आदत डालो, देह से न्यारा होने की आदत डालो, अभ्यास डालो, ये एक ही तो मुख्य अभ्यास है। जो आत्मा को खींचता है सबसे ज्यादा। बस सुबह से लेकर शाम तक देखते रहना, लाशें आ रही है, चिताएं आ रही है, व्यक्ति जल रहे है, आत्माएं जल रही है, आत्माएं शरीर को जला रही है, चलो ऐसे भी बोल सकते, शरीर को जलते हुए देखना रोज, तो कितना वैराग आ जाएगा। उसके बाद ही आत्मा योग्य होती है सन्यासी जीवन के लिए। सन्यासी जीवन ऊंचा जीवन है, दूसरे को भी देखो अपने को। पर मनुष्य की मूर्खता ऐसी है कि वो ये हमेशा सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, दूसरे मर रहे, ये मरा आज, वो गया आज, आज इसकी स्मशान में जाके आए, पर कभी ये इस बात से उसको हमेशा डर रहता है कि उसको लगता है कि मैं नहीं जाऊं। जवानी में तो कभी उसको लगता नहीं, ऐसे बुढ़ापे में भी तो भी थोड़ा आ जाता है संकल्प कि अभी मृत्यु आने वाली है, पर जो जवान लोग होते हैं उनको तो लगता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। पर एक है असुरक्षा में जीना, असुरक्षा में जीना अर्थात इसका अर्थ होता है कि जीवन में जो भी वास्तविकता है उसको स्वीकार करते हुए जीना। मृत्यु अटल सत्य है, आएगा, बीमारी अटल सत्य है, आएगी, इसको स्वीकार करना। असुरक्षा अर्थात सुरक्षा की जहां मांग ना, तो ये असुरक्षा में तो जीना है, पर ये जो सुरक्षा की जो मांग है इसको हटा देना है। ये सुरक्षा की एक मांग है, एक अलग प्रकार की परिभाषा है ये। कल हमने सेफ्टी के साधन गिनाए थे बहुत सारे, पर आज मैं कह रहा हूं कि असुरक्षा में जीना अर्थात, परंतु सुरक्षा की मांग नहीं है वहां पर, इस असुरक्षा में जीना अर्थात जीवन के जो सत्य है, वृद्धत्व आएगा, बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे और मृत्यु आएंगे, ये तीन चीजें तो आनी है। वृद्ध को ये चार चीजें देखने के बाद ही तो वैराग आया, मृतक को देखा, रोगी को देखा, वृद्ध को देखा और सन्यासी को देखा, चारों को देखा और रातों रात क्रांति घटी, एक सब कुछ छोड़कर चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसके सारथी ने उसे कहा कि देखो इतना सुंदर राजभवन कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी सुंदर पत्नी, सुंदर बेटा, इतना ये सुख संसार में, ये तुम्हारे राजमहल में है। वो कह रहा है, वो कहता है कि मुझे केवल आग की लपटें दिख रही है बस, और कुछ नहीं, सब कुछ जलता हुआ, सब कुछ भस्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारा ज्ञान स्वयं को स्वयं समझाना, सर्व खजानों के महत्व को स्वयं समझाना, किसी और को समझाने की बात नहीं है अभी। हे मूर्ख मन, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के बाद लिखता है कि ये सारी रामचरितमानस मैंने अपने मन को समझाई है, दूसरों को नहीं, कि हे मूर्ख मन सुन, ये है राम। अब इस राम को छोड़कर तुम काम के पीछे जाते हो, पावा परम विश्रामा। अंत में वो लिखता है कि ये लिखने के बाद अब मैं परम विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। तो बाबा कह रहे हैं सफलता किसका जन्मसिद्ध अधिकार है, समर्थ आत्माओं का। इस वाक्य को रिप्लेस कर देना ब्राह्मणों के जगह, समर्थ आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, समर्थ ब्राह्मण, मैं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये है समर खजानों को गवाना नहीं, और दूसरी विधि है जो खजाने हैं उनको सफल करना। सफल कैसे करेंगे, दान देकर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, मनसा से बांटेंगे, वाचा से बांटेंगे, या अपने प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जीवन से बांटेंगे। अपने आप को ही ऐसा बना देना, जरूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ आते हैं नए लोग उनको ज्ञान ही सुनाना, क्योंकि ऑलरेडी सुन के आते हैं उनसे, केवल बात भी हमने की, वाइब्रेशंस भी तो कुछ है ना हमारे, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी तो काम करेंगे ना, तो केवल उनसे उनकी केवल हालचाल पूछना वो भी बहुत बड़ी चीज है। ऐसे नहीं कि कोई, जैसे हमारे इधर एडमिट होते तो हम बहुत कम उनको ज्ञान सुनाते, जरूरी नहीं है ज्ञान नहीं सुनाते किसी को, अगर वो इंटरेस्टेड है तो ही सुनाते। स्थूल सेवा भी उनको कर दो, उसके बाद में ज्ञान को, हर एक का बीज तो है, वो कभी ना कभी तो निकलेगा। तो जरूरी नहीं कि हम ही वो व्यक्ति निमित्त बने जो उसको 7 डे का कोर्स कराए, हम बीज डाल दे, कराने वाले तो बैठे हैं, कराएंगे, ये भी एक श्रेष्ठ सेवा है। तो मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, ओम शांति।